नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। घरेलू अल्कोहल कंपनियों से बातचीत पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया कि बिक्री की मात्रा में वृद्धि और उत्पाद मिश्रण लाभ से उद्योग की आय बढ़ने का अनुमान है। इसके मुताबिक कच्चे माल की लागत बढ़ने का दबाव, विशेष रूप से अनाज की कीमतों और पैकेजिंग सामग्री के महंगा होने के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में उद्योग का परिचालन लाभ मार्जिन 0.90 से 1.4% तक सिकुड़ जाएगा। उद्योग वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में महामारी के चलते प्रभावित हुआ था। हालांकि इसके बाद 2022-23 में इसने मजबूत तरीके से वापसी की। इस दौरान शराब और बियर दोनों खंडों में अच्छी मांग देखी गई। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कहा कि पश्चिमी देशों और चीन के बीच बढ़ती खाई को देखते हुए भारत वैश्विक स्तर पर अच्छी स्थिति में है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत को खास बनाने वाली तीनों स्तंभ लोकतंत्र, स्वतंत्र मीडिया और धर्मनिरपेक्षता को देश पकड़े रहेगा। कार्नेल विश्वविद्यालय में अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बसु ने कहा कि इन तीन स्तंभों की अब खास तौर पर जरूरत है, क्योंकि दुनिया इस समय महामारी के बाद की आर्थिक और सामाजिक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। कार्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बसु के हवाले से बयान में कहा, पश्चिमी देशों और चीन के बीच बढ़ती खाई को देखते हुए भारत विश्व स्तर पर अच्छी स्थिति में है। बसु ने कहा कि पिछली सदी में आजाद हुए कई देशों में से भारत अपने लोकतंत्र, स्वतंत्र मीडिया और धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को चेताया कि ऊंची ब्याज दरों, यूक्रेन में चल रहे युद्ध और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण विश्व अर्थव्यवस्था अपनी गति खो रही है। IMF ने अनुमान जताया कि 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी होकर 2.9% रह जाएगी, जिसके लिए इस साल 3% रहने की उम्मीद है। अगले वर्ष के लिए पूर्वानुमान जुलाई में अनुमानित 3% से कम है। ये सुस्ती ऐसे समय में आई जब दुनिया विनाशकारी COVID-19 महामारी के प्रकोप से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले सहित कई झटकों के कारण पिछले 3 वर्षों में दुनिया भर के आर्थिक उत्पादन में कोविड पूर्व रुझानों की तुलना में लगभग 3,700 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आई है। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने सऊदी अरब के निवेशकों को देश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को ये जानकारी दी गई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार मंत्री ने सोमवार को सऊदी अरब में सऊदी के व्यावसायिक जगत के लोगों और निवेशकों की एक सभा को संबोधित करते हुए भारत में निवेश का आह्वान किया। मंत्रालय ने कहा, भारत और सऊदी अरब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक दूसरे के देश में निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। सिंह ने भारत में और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन आदि जैसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने के लिए, इससे पहले केंद्रीय बिजली एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री सिंह ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े मंच ओयो ने राकेश कुमार को उप मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया है। इससे पहले कुमार नियंत्रण प्रमुख थे। कुमार 5 साल पहले बतौर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमुख ओयो से जुड़े थे। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार कंपनी बढ़ी हुई भूमिका में राकेश कोष, कंट्रोलशिप, साझा सेवाएं, कारोबार निवेश, कराधान, वित्तीय योजना और विश्लेषण सहित महत्वपूर्ण परिचालन वित्त कार्यों की देखरेख और संगठन में परिणामों, अनुपालन और समय पर ऑडिट के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। वह अब भी ओयो के मुख्य वित्तीय अधिकारी अभिषेक गुप्ता के अधीन काम करेंगे। इंजीनियरिंग एवं निर्माण समूह लार्सन एंड टुब्रो की जल व अपशिष्ट उपचार इकाई को कई बड़े ठेके मिले हैं। कंपनी ने इन ठेकों के मूल्य की जानकारी नहीं दी, हालांकि कहा कि ठेके महत्वपूर्ण श्रेणी में आते हैं। अनुबंधों के वर्गीकरण के अनुसार इनके 1000 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार उसकी जल व अपशिष्ट उपचार इकाई को राजस्थान के जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से एक इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण का ठेका मिला है। इसके तहत जल जीवन मिशन के तहत चंबल नदी से चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गांवों के लिए जल आपूर्ति परियोजना का निर्माण किया जाएगा। कोयला उद्योग में 2035 तक 4 लाख से अधिक खनन संबंधित नौकरियां खत्म होने की आशंका है, यानी हर दिन करीब 100 श्रमिकों की नौकरी जा सकती है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। जलवायु प्रतिबद्धताओं या कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की नीतियों के बिना भी चीन और भारत में ऐसा होने की आशंका है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार इसकी प्रमुख वजह सस्ती पवन व ऊर्जा उत्पादन की ओर बाजार का बदलाव और कोयले के बाद अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रबंधन के लिए योजना की कमी होगी। अमेरिका स्थित एक गैर सरकारी संगठन ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर उभरते अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य का विश्लेषण करता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।